الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. میرے محترم بھائیوں اور عزیز بزرگوں، سورہ بقرہ کا 37واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس رکوع کا تعلق گزشتہ رکوع کے ساتھ موجود بھی ہے اور ملتا جلتا بھی ہے. گزشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے جو حکم تھے، ادب تھے، طریقے تھے، قرآن کریم میں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے تھے. اور اس رکوع میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کے کچھ مزید آداب، کچھ مزید حکم، کچھ مزید مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو، خرچ کیا کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، جو تم کوشش کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، خرید و فروخت کرتے ہو، اور اس کوشش کے نتیجے میں حق، حلال، پاک، صاف ستھرا مال اللہ تعالیٰ جو آپ کو نصیب کر دیتے ہیں، اس مال میں سے اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم زمین سے نکالتے ہیں تمہارے لیے، اس میں سے بھی اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہے. یہاں پہ دو باتیں ہو گئی ہیں. پہلے نمبر پہ تجارت کا ذکر ہے اور دوسرے نمبر پہ زراعت کا ذکر ہے. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے فقہ میں مقتدا ہیں اور ہمارے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری فقہ میں تجارت زراعت سے زیادہ افضل ہے. اور اس پہ دیگر دلائل بھی ہیں. انبیاء کرام بھی تجارت کرتے تھے، اولیاء اللہ بھی تجارت کرتے تھے، خود امام اعظم کی تجارت بغداد میں مشہور تھی. ان دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل وہ یہ آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تجارت کا ذکر فرما دیا ہے اور دوسرے نمبر پہ زراعت کا ذکر کر دیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زراعت تجارت سے زیادہ افضل ہے، اور ان کے نزدیک اس کے اپنے دلائل موجود ہیں. یہاں پہ جو آیت کا منشا اور مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی ترغیب اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی دعوت. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ، اور گھٹیا چیزوں کا ارادہ نہ کرنا. مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جس میں سے تم خرچ کرتے ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور خود لینے کو پسند نہیں کرتے ہو. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم نظر پوشی کرتے ہو. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسی گھٹیا چیز، ایسی گری پڑی چیز جو تم خود اپنے لیے استعمال کرنا پسند نہیں کرتے ہو، اپنے لیے کھانا پسند نہیں کرتے ہو، اپنے لیے پہننا پسند نہیں کرتے ہو، ایسی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آپ کو پسند کیوں ہے؟ تو خلاصہ وہی ہوا کہ دیکھیے، تجارت میں جو حق حلال کی چیزیں، طیبات ہیں، صاف ستھری چیزیں ہیں، بہترین قسم کی چیزیں ہیں، وہ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت کے اور ثواب کے اجر کے وعدے کیے ہیں وہ آپ کو نصیب ہوں گے. اور اسی طرح اگر زراعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو زراعت میں سے بھی جو عشر ادا ہوتا ہے، خراج ادا ہوتا ہے، اس کے لیے A1 کوالٹی کا مال ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ جو خراب سبزی تھی، خراب گندم تھی، خراب مکئی تھی، وہ آپ نے زکوٰۃ کے نام پہ دے دی. ایسی زکوٰۃ، ایسا صدقہ، ایسی خیرات اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے. اور اسی طرح خبیث کا ایک ترجمہ گھٹیا ہے اور دوسرا ترجمہ حرام ہے. علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ مال حرام میں سے اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے یا خیرات کرتا ہے تو اس قسم کا عمل ہمارے دین میں جائز نہیں ہے. اور فتاوی شامی میں مسئلہ موجود ہے کہ ایک فقیر کو یہ بات معلوم ہو کہ مجھے جو پیسے دیے گئے ہیں وہ حرام کے ہیں، مجھے جو مال دیا گیا ہے وہ حرام کا ہے، اور اس کے باوجود وہ فقیر دینے والے کو دعا دیتا ہے، جزاک اللہ کہتا ہے، فقد کفرا، ایسا فقیر وہ کافر، اس لیے کہ دین کا خلاف کر رہا ہے اور دین کے خلاف کو دین کا حصہ بنا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا عمل وہ کفر کا سبب ہے. جیسے ایک شخص کعبۃ اللہ کو سجدہ نہ کرے، کسی اور جگہ کو سجدہ کرے اور اس میں سبحان ربی العظیم پڑھتا رہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا رہے، تو تمام دنیا کے علماء یہ فتویٰ دیں گے کہ یہ سجدہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، تسبیحات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، بلکہ ایسا عمل کرنے والا وہ کافر. تو بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے دینے والے کو بھی اور لینے والے کو بھی. یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے اور وہ یہ کہ لوگ بینک میں پیسے رکھتے ہیں، انویسٹمنٹس کرتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹس کھولتے ہیں اور اس میں سود جمع ہوتا ہے، سال کے گزرنے کے بعد وہ رقم سود کی رکھنے والے کو دے دی جاتی ہے، مل جاتی ہے، تو اس رقم کو کس طریقے سے آگے کریں گے، کس طریقے سے اس سے جان چھڑائیں گے، اس کے لیے علماء نے تفصیل بیان کی ہے. مفتی اعظم ہند حضرت مولانا کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کفایت المفتی میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایسی رقم بہت ہی زیادہ جو محتاج ہے، बहुत ही ज़्यादा जो गरीब है, जिसके पास नान शबीना का सबब भी मौजूद नहीं है, ऐसे शख्स को सवाब की नियत के बग़ैर दे दिया जाए तो ये ठीक है। और मुहद्दिसुल असर हज़रत मौलाना यूसुफ़ बन्नूरी रहमतुल्लाह अलैह मारिफ़ सुनन में इसी मसले के ज़ेल में बयान फरमाते हैं कि सूद की रकम या हराम की रकम किसी को देते हुए सवाब की नियत जायज़ नहीं है, बल्कि इज़ालतु नजस की नियत करेंगे तो वो ठीक है। जैसे एक शख्स इस्तिंजा करता है, एक शख्स वुज़ू करता है, एक शख्स तयम्मुम करता है, तो उस अमल के अंदर इज़ालतु नजस की नियत होती है। इसी तरह हराम की रकम अगर किसी मोहताज को दी जा रही है तो उसमें सवाब का तो सोचना भी नहीं है, बल्कि इज़ालतु नजस की अगर आप नियत कर लेंगे तो ये नियत उलमा के नज़दीक ठीक है। वला तयम्ममुल खबीसा, और तुम इरादा न करना गंदी चीज़ों का, मिन्हु तुन्फिकूना, जिसमें से तुम खर्च करते हो, वलस्तुम बिआखिज़ीही, और ख़ुद लेते नहीं हो। इसी तरह अल्लाह ताला ने यही मज़मून एक और जगह पे भी बयान किया है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, उस वक्त तक अल्लाह के हाँ तुम्हारी नेकी कबूल नहीं है, अल्लाह के हाँ तुम्हारी भलाई मकबूल नहीं है, जब तक के तुम उस में से खर्च न कर लो जो चीज़ तुम्हारे नज़दीक पसंदीदा है। और आजकल जो हमारे भाई लोगों का अमल है वो इसके उलट है। शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, मौली साहब को बुला लिया है, मौली साहब ने निकाह पढ़ा दिया, उसको फीस देने में 5,000 रुपये में तकलीफ़ होती है। किसी आलिम के पास अच्छी गाड़ी आ जाए, अल्लाह ताला उसको कोई बेहतरीन लिबास नसीब कर दें, दुनिया की चीज़ें अच्छी आ जाएं, तो उसकी तकलीफ़ होती है। ये मौलवी साहब इतने ज़्यादा अमीर क्यों हो चुके हैं, हालांकि हकीकत ये नहीं है, आगे आयात में तफसील आ रही है। यहसबहुमुल जाहिलु अग्निया मिन तअफ्फुफ़, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारे नेक बंदे उनको जब जाहिल देखता है तो वो समझता है ये तो गनी हैं, ये तो अमीर हैं, इनके पास तो बहुत कुछ है। तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम, हज़रत आप उनको जानते हैं, उनके चेहरों में अल्लाह ताला की दीन की नूरानियत होती है, उनके चेहरों में दीन की मदद की तलब होती है। ला यसअलूना अन्नास इल्हाफा, और वो लोगों से लिपट लिपट के मांगते नहीं, और वो लोगों से लड़ झगड़ के मांगते नहीं हैं। उलमा का तरीक़ा यही है, तलबा का तरीक़ा यही है। इसलिए शादी के अंदर जो गाने गाने के लिए आती है उसको पैसे न दीजिए, उलमा को दीजिए। शादी के अंदर जो ढोल बजाने वाला आता है उसको पैसे दे के आपको कोई अजर नहीं मिलना, उसके बदले में तलबा को दीजिए, मुजाहिदीन को दीजिए, मुबल्लिगीन को दीजिए, कुरान और सुन्नत के मकातिब को दीजिए, तो उसमें दुनिया का भी फ़ायदा है और आखिरत का फ़ायदा भी है। और यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो तुम अल्लाह के रास्ते पे खर्च करते हो उसका ठीक होना, हलाल होना, बेहतरीन होना, अच्छा होना ज़रूरी है। और वअलमु, जान लो, अन्नल्लाह गनीयुन हमीद, बेशक अल्लाह ताला को तुम्हारे सदक़ात की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला को तुम्हारी ज़कातों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो एक मुसलमान का वजीफ़ा है। पता कैसे चलेगा कि कौन सा शख्स अल्लाह की बात सुनता है, कौन सा शख्स शैतान की बात सुनता है, कौन से शख्स के दिल में अल्लाह के नाम पर खर्च करने का दाहिया मौजूद है, और कौन से शख्स के दिल में शैतान के उकसाने की वजह से कंजूसी गालिब है। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर होने के लिए अल्लाह ताला हमें और आपको इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह में खर्च करने की तालीम देते हैं। और आगे फरमाया कि अशैतानु यईदुकुमुल फ़क्र, शैतान तुम्हें डराता है फ़क्र से। اس سے واضح بات کیا ہوگی؟ قرآن کریم کی آیت ہے کہ شیطان تمہیں کہتا ہے کہ دیکھو خرچ نہ کرنا، طلباء کو تو نہیں دینا، مدارس دینیہ کو تو نہیں دینا، یہ لوگ تو امیر ہیں، ان کے پاس تو بہت کچھ ہے. والفحشاء، اور شیطان تمہیں بے حیائی کی طرف دعوت دیتا ہے. وہی بات کہ شادی میں جو گانے گا رہا ہے اس کو لاکھوں روپیہ دے سکتے ہیں، جو ڈھول بجا رہا ہے اس کو لاکھوں روپیہ دے سکتے ہیں، ایک سیلفی کے لیے جو کوئی خاص قسم کی بڑی سیلیبریٹی کو بلایا گیا ہے اس کو آپ لاکھوں روپے دیں گے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، یہ شیطان کی تعلیم. علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے اور سمجھنے کے بعد بھی اگر کسی شخص کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا، اس شخص کو فوراً توبہ کی ضرورت ہے، اس شخص کو فوراً شیطان سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. واللہ یعیدکم، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں مغفرتا، مغفرت کا. انفاق فی سبیل اللہ کا جو فوری فائدہ ہے وہ گناہوں کی معافی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا جو اجر ہے وہ مغفرت ہے، اور مغفرت دنیا و ما فیہا اور کائنات کا سب سے بڑا مقصود ہے، اصلی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کی مغفرت کر دیں تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی اور نعمت، کوئی انعام اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں ہے. ہمیشہ کی جنتیں، ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی رحمتیں وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہیں، اور جس کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کا مقام جنت ہے. وَفَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ تم سے یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اگر انفاق فی سبیل اللہ کرو گے تو غریب نہیں ہوگے. انفاق فی سبیل اللہ کی برکت وہ فضل ہے، اور فضل ہمارے دین میں برکت کو کہتے ہیں، فضل کشادگی کو کہتے ہیں، فضل خوشحالی کو کہتے ہیں. تو دو چیزوں کی وعدہ شیطان کرتا ہے اور دو چیزوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فضل دیں گے. شیطان بے حیائی کا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں. تو اس میں ترتیب ہے کہ شیطان فقر کہتا ہے تو اس کے مقابلے میں فضل موجود ہے، اور شیطان فحشاء کی تعلیم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری طرف آؤ، میرے احکام کو مانو، میری تمام شریعت پہ عمل کرو، اس کے بدلے میں میں تمہاری مغفرت کروں گا. واللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب باخبر ہیں، اور اللہ تعالی کے نزدیک کسائش ہے، اللہ تعالی کے ہاں ہر چیز بے حساب ہے، بہت زیادہ ہے. کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ اللہ تعالی کتنا دیں گے، اللہ تعالی آپ کی سوچ سے زیادہ دیں گے. اللہ تعالیٰ کا فضل کیسے ملے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو فضل دیں گے، وہاں سے برکت دیں گے جہاں سے ملنے کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ، یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ خراج جو زمین میں دیا جاتا ہے اور عشر، وہ بھی زمین کی زکوٰۃ ہوتی ہے. عشر میں اور زکوٰۃ میں فرق ہے. زکوٰۃ سونے اور چاندی اور نقدی اور مال تجارت پر جب ایک سال گزر جاتا ہے تو ایک سال کے گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے. عشر کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، جب بھی فصل آتی ہے اس فصل کا دسواں حصہ اللہ کے نام پہ دینا ہے، یہ عشر. اور عشر عبادت ہے، خراج ٹیکس ہے. اس لیے مسلمانوں سے جو زمین کی عشر لیا جاتا ہے اس پر اجر بھی ہے اور وہ عبادت بھی ہے، اور کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے، اور عبادت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. اس لیے کافر سے جو ایک اسلامی ریاست خراج وصول کرتی ہے اس میں اجر نہیں، उसमें सवाब नहीं है, उसमें बस दुनिया का जो हुक्म है एक गवर्नमेंट की और एक इस्लामी हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी होती है, उस ज़िम्मेदारी में वो हुकूमत पाबंद है, आखिरत का कोई हुक्म उसके ऊपर नहीं। अलबत्ता उशर वो ज़कात की एक किस्म है और उशर देने वाला अल्लाह के यहाँ माजूर होता है, और अगर कोई कहे कि ये इबादत है तो वो ठीक है। आगे फरमाया कि अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं हिकमत दे देते हैं, वमन युतल हिकमा, और जिस किसी को हिकमत नसीब हो जाती है, फ़कद उतिया खैरन कसीरा, उसको बहुत बड़ी खैर मिल जाती है, उसको बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ऐसा ख़ज़ाना मिल जाता है कि उस ख़ज़ाने के मुकाबले में कोई और चीज़ दुनिया में उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती है। हिकमत क्या चीज़ है? तफसीर बहरुल मुहीत में 30 के करीब मुफसरीन के अक्वाल नकल किए गए हैं हिकमत के मतलब में, हिकमत के माना में, और उस 30 अक्वाल के ज़िक्र करने के बाद कहते हैं कि ये हकीकत में मुतकारब हैं, करीब करीब हैं, एक जैसे हैं, इनके दरमियान सिर्फ़ ताबीरात का फ़र्क है, मकसूद असली और माना असली का फ़र्क नहीं है। और वो माना असली क्या है? वज़ु शय मकानहु, हर चीज़, हर अमल जो भी आप दुनिया में अपने काम करते हैं, ज़िम्मेदारियां अदा करते हैं, उनको उनके तकाज़ों और आदाब के साथ करना, ये हिकमत। वहाज़ा ला यहसुलु इल्ला बिलउलूम नबुव्वा, आगे फरमाते हैं, और ऐसी सलाहियत कि दुनिया की हर चीज़ आप उसके तकाज़ों के मुताबिक करते हों, हर काम उसके आदाब के मुताबिक करते हों, हर फ़ैल उसके प्रोटोकॉल्स के मुताबिक करते हों, ये इल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रास्ते से हासिल होता है, और वो रास्ता नबुव्वत है। यही वजह है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हिकमत भी अता फ़रमाई है, किताब भी अता फ़रमाई है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया के बारे में फरमाया, हमने उनको हिकमत दी थी। हिकमत क्या चीज़ है? हिकमत सलीका है, हिकमत तमीज़ की आला तरीन सतह है, और हिकमत हर वो फ़ैल जिस तरह से वो होना चाहिए था उस तरह से करना, वो हिकमत। और इसी तरह चूँकि हिकमत बहुत बड़ा लफ्ज़ है, और जो बड़ा लफ्ज़ होता है, जो मोहतम शान वाला होता है, उसके मानी अरबी में ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि हिकमत का एक माना कुरान करीम है, हिकमत का एक माना सुन्नत नबविया है, हिकमत का एक माना उलूम दीनिया है, हिकमत का एक माना तफसीर है, हिकमत का एक माना हदीस है, हिकमत का एक माना फ़िक्ह है, हिकमत का एक माना अक़्ल सलीम है, हिकमत का एक माना सोच का सही होना है, हिकमत का एक माना अखलाक है, हिकमत का एक माना मुआशरत हसीना है, और हिकमत का एक माना अल्लाह की खशियत। अब जब ये सारे माने आपके जहन में होंगे और आप कुरान और हदीस को पढ़ेंगे, तो हर जगह सियाक और सबाक के मुताबिक जो हिकमत का माना होगा वो आपको समझ में आएगा। इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह मुफ़रदातुल कुरान के मुसन्निफ़, बहुत बड़े मुफस्सिर आलिम हैं, उन्होंने एक बात बयान की। वो फरमाते हैं कि हिकमत के लफ्ज़ का नस्बत जब अल्लाह ताला की तरफ होती है तो इसका माना अलग है, और मखलूक की तरफ जब होती है तो इसका माना अलग है। जब अल्लाह ताला की तरफ हिकमत की नस्बत हो तो ऐसी सूरत में हिकमत का माना खल्क है, हिकमत का माना ईजाद है, हिकमत का माना पैदा करना है, मारिफत है। और जब हिकमत का माना मखलूक की तरफ नस्बत किया जाता हो तो ऐसी सूरत में फिर हिकमत का माना मारिफत कामिला है, मुकम्मल तौर पे किसी चीज़ को जानना है, मुकम्मल तौर पे किसी चीज़ को समझना है। और यही वजह है कि फ़िक़्ह को हिकमत कहा गया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत की तफसीर में फ़रमाया है कि इससे मुराद फ़िक़्ह है, इसलिए कि फ़िक़्ह में क़ुरान करीम भी मौजूद है, फ़िक़्ह में हदीस भी मौजूद है, फ़िक़्ह में तारीख़ भी मौजूद है, फ़िक़्ह में सहाबा के अक़वाल भी मौजूद हैं, फ़िक़्ह में ताबईन और आइम्मा के फ़तावा भी मौजूद हैं। यही वजह है कि वमन यूतल हिकमत फ़कद उतिया खैरन कसीरा, अल्लाह ताला जिसको दीन की समझ दे देते हैं, अल्लाह ताला जिसको फ़िक़्ह की समझ दे देते हैं, अल्लाह ताला जिसको फ़िक़्ह के तमाम वसाइल दे देते हैं, उसको एक ऐसी नेमत मिल गई है कि दुनिया का कोई इल्म, दुनिया का कोई फ़न उसके मुकाबले पर नहीं है। तो ये तफसील हिकमत की, उम्मीद है कि आप हजरात समझ रहे होंगे कि अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं उसे हिकमत दे देते हैं। हिकमत के मानी मुफस्सिरीन ने बहुत सारे किए हैं, लेकिन साहिब तफसीर बहरुल मुहीत ने कहा है इन्नहा मुताकारबा, ये सारे के सारे माना एक दूसरे के करीब हैं। और उसका मतलब यही है कि जो अमल आप कर रहे हैं वो तमीज़ से हो, वो सलीक़े से हो, वो अदब से हो, वो अपने तमाम लवाजमात के साथ हो। वहाज़ल फ़न्नु ला यहसुलु इल्ला बिन्नुबुव्वा, और ये सलाहियत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला अंबियाए किराम को देते हैं। अंबियाए किराम उम्मी होते हैं, किसी से पढ़े हुए नहीं होते। आज बुखारी शरीफ में हमारा ये सबक था, आपने फरमाया मैं उम्मी हूँ, मुझे हिसाब किताब नहीं आता, मैं लिखता भी नहीं हूँ, उसके बावजूद इतनी आली फजीलत, ऐसा इलम, ऐसे अखलाक हसना, इतनी प्यारी सीरत, ये सब के सब अल्लाह ताला की तरफ से अम्बिया किराम को खुसूसी तौर पे अता कर दिया जाता है। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उल अलबाब, और नहीं समझते मगर अकल वाले। ये अजीब बात है कि जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला हिकमत का ज़िक्र फरमाते हैं उसके साथ अकल का ज़िक्र ज़रूर करते हैं। वो लोग जो फुकहा पे तशनी करते हैं और फुकहा को ताने देते हैं कि फुकहा दीन के मुकाबले में अकल का इस्तेमाल करते हैं, उनकी आंखें बंद हैं, वो अंधे हैं। यह आयत देखिए, हिकमत का ज़िक्र आ गया, इल्ला उलुल अलबाब, अकल का ज़िक्र भी आ चुका है। कुल हल यस्तवी अल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं है। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, आगे फरमाया बात समझते हैं वही जिनके पास अकल होती। वर्रासिखून फिल इल्म यकूलून आमन्ना बिह, और वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने इल्म में रसूख दिया है, अल्लाह ताला ने इल्म में तहकीक और मुहक्किकाना अंदाज़ दिया है, यकूलूना आमन्ना बे, वो अल्लाह के कलाम के बारे में कहते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा ईमान इस पर मौजूद है। कुल्लु मिन इंद रब्बिना, जो भी आयतें हैं, जितनी भी हुक्म हैं, सब के सब अल्लाह ताला की तरफ से हैं। आगे गौर कीजिएगा, वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, नहीं समझते मगर वो लोग जिनके पास अकल मौजूद। तो अकल और इल्म ये लाजिम मलजूम है। अकल ये तो इंसान की खसूसियत है, और अकल ये तो नॉलेज है, अकल ये तो इंसान को जानवर से जुदा करती है, मुमताज़ करती है। और जब इस अकल को आप कुरान और सुन्नत के जेवर से सजा लेते हैं तो वो फ़िक़्ह है। यही वजह है कि हिकमत का राजह और सबसे ज़्यादा मज़बूत माना वो फ़िक़्ह है। और अल्लाह ताला जिसको फ़िक़्ह नसीब कर देते हैं उसमें ऐसा मलका आ जाता है कि आखिरत और दीन के अहकाम तो अपनी जगह हैं, दुनिया की चीज़ों में भी उनको बात समझ में आती है, दुनिया के मामलात भी वो अच्छी तरह समझ लेते हैं, और बहुत जल्दी वो भांप लेते हैं किसी भी चीज़ की हकीकत को। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़ा, और जो कुछ तुम खर्च करते हो, औ नज़र तुम मिन नज़रिन, या जो कुछ तुम नज़रें मानते हो, ये माँ आमा है, तलबा जानते हैं इसमें हर चीज़ मौजूद है, हराम भी मौजूद है, हलाल भी मौजूद है, सदका भी मौजूद है, खैरात भी मौजूद है, ज़कात भी मौजूद है, हदिया भी मौजूद है। ये न समझना कि हम जो ज़कात दे रहे हैं वो अल्लाह ताला जानते हैं और जो हम हराम दे रहे हैं वो अल्लाह ताला नहीं जानते, ये बात गलत है। आपका हर अमल और हर फेल अल्लाह ताला की नज़र में है, अल्लाह ताला की बसीरत में है। इसी तरह जो तुम नज़रें मानते हो, अगर मेरा बेटा हो गया तो मैं हज करूँगा, अगर मेरा बेटा हो गया तो मैं उमरा करूँगा, अगर मेरा ये जॉब लग गई तो मैं 100 रकात नफल पढ़ूँगा, अगर मेरी बात चल गई तो मैं रोज़े रखूँगा, ये सब नज़र है। फिर बाद में इनसे भागने की इजाज़त नहीं है। जो नज़र की है वो नज़र का पूरा करना ज़रूरी है, लेकिन ये याद रखिएगा कि नाजायज़ नज़र, मसलन कि अगर मेरा काम हो गया तो मैं नमाज़ पढ़ना छोड़ दूँगा, ये नज़र नहीं है, ये लायानियात हैं, ये बकवास है। इसलिए दीन में इस किस्म की नज़र मंजूर नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो नज़र जो अल्लाह ताला के अहकाम और अल्लाह के दीन के मुताबिक होगी, वो नज़र बेहतरीन है और उसका पूरा करना एक मुसलमान के लिए वाजिब है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़ा, कोई ख़र्चा भी तुम करते हो, वाओ नज़र तुम मिन नज़रिन, या बयानात देते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, नज़रें मानते हो, फ़इन्नल्लाहा यालमु, अल्लाह ताला जानते हैं, गाफिल नहीं है। और तुम्हें भी इस बात से होशियारी की ज़रूरत है कि एक एक पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे ख़र्च हो रहा है, ज़बान से क्या कलेमात निकल रहे हैं, क्या अल्फाज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ आपने वादे किए हैं और अब उन वादों से आप पीछे हट रहे हैं, अल्लाह ताला के यहाँ इसके मुआखज़ा होगा, सवाल होगा। वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, और ज़ालिमीन का कोई मददगार नहीं है। क्या मतलब है कि जालिम आर्जी तौर पे तो बड़ा बदमाश होता है और मज़लूम की चीज़ ज़ब्त कर लेता है, हक मार लेता है, इज़्ज़त लूट लेता है, जान ख़त्म कर देता है, लेकिन जो उसका अंजाम होता है अल्लाह ताला दुनिया में भी दिखा देते हैं कि अक्सर व बेशतर लोग उसके ऊपर थू थू करते हैं, लोग उससे दूर भागते हैं, कोई उसके करीब जाना पसंद नहीं करता है। और आखिरत में अल्लाह की अदालत में हिसाब किताब होना है, वहाँ पे कोई रिश्वत नहीं है, वहाँ पे कोई सिफारिश नहीं है, वहाँ पे कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं है, वहाँ पे कोई VIP नहीं है, बल्कि सब बराबर हैं। इसलिए किसी किस्म की कोई मदद जालिम के लिए अल्लाह ताला के यहाँ नहीं है। इन तुबदो सदक़ात फ़नइमा हिया, अगर तुम सदका दिखा कर देते हो तो बहुत भली बात है, अच्छी बात है। गौर कीजिएगा आयात पे, इन तुबदो सदक़ात फ़नइमा हिया, अगर तुम सदक़ात खुल कर देते हो, अलल एलान देते हो, सबको दिखा कर देते हो, फ़नइमा हिया, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें रियाकारी नहीं है। पिछली मजलिस में ये बात हुई थी कि कहीं पे इमदाद की ज़रूरत है, कहीं पे ज़कात की ज़रूरत है, और आप ज़कात दे रहे हैं, आपने ऐलान किया कि मैं फ़लाँ जगह इमदाद भेज रहा हूँ, और मकसद रियाकारी नहीं है, मकसद लोगों की तरगीब है, मकसद रियाकारी नहीं है, मकसद मुसलमानों में अमल के जज्बे को जगाना है, फ़नाएं माहिया, ये बहुत अच्छी बात है। व इन तुख्फूहा, और अगर तुम छुपा के देते हो, कैसे छुपा के देते हो, वरजुलुन अनफ़क़ यमीनुहु हत्ता ला तअलम शिमालुहु, अल्लाह ताला को पसंदीदा आदमी मैदान हशर में कौन है, जिसका सीधा हाथ खर्च करता है और उसके उल्टे हाथ को मालूम भी नहीं होता है। फरमाया हुआ इन तुख्फूहा, और अगर तुम सदक़ात छुपा के देते हो, व तुतूहल फ़ुक़रा, और मुस्तहिकीन को देते हो, फ़ुक़रा फ़कीर, मन ला शैअ लहू, जिसके पास कोई चीज़ नहीं है, तो फ़ुक़रा का तर्जुमा हम गरीब का नहीं करेंगे, बल्कि फ़ुक़रा का तर्जुमा हम मुस्तहिक, हर वो शख्स जिसको दीन में इमदाद की ज़रूरत है, हर वो शख्स जिसके पास मोहताजी है, हर वो शख्स जिसके पास भूख है, हर वो शख्स जिसके पास किसी की भी किस्म की हाजत की कमी है, वो मुस्तहिक। हाँ, ज़कात के मुस्तहिकीन अलग हैं, صدقات کے مستحقین الگ ہیں، خیرات اور ہدایہ کے مستحقین الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کھل کے دو تو اچھی بات ہے، اگر چھپا کے دو، لیکن دو کس کو؟ مستحقین کو۔ فہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ علماء نے دونوں میں موازنہ کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ علی الاعلان خرچ کرنا بہتر ہے، اور جہاں پہ اعلانات کی ضرورت نہ ہو وہاں پہ اخفاء کرنا اور چھپا کر دینا یہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ احسان کریں گے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہیں۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، صحابہ کرام بڑے پیارے لوگ تھے، صحابہ نے کافروں کو صدقے دینا شروع کر دیے تھے کہ ایسے تو یہ بےمان بات مانتے نہیں ہیں، قرآن و سنت کو مانتے نہیں ہیں، شاید چندے کی وجہ سے مان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے پیغمبر آپ کو ہم نے بھیج دیا ہے، آپ کے ذمے پیغام کا پہنچانا ہے، اس کا ایمان لانا یا نہ لانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لہٰذا مسلمانوں کی مدد کیجئے۔ اب ذرا دیکھیے جو آپ لوگوں سے منہ کھول کے چندے مانگتے ہیں، زکاتیں مانگتے ہیں، خود ان کے مذہب میں زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کو کہتے ہیں زکوٰۃ دے دو، وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم انسانیت جانتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے ذرا کہ صحابہ نے کافروں کو جو چندہ دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ غلط کیا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، جو مسلمان ہو چکا ہے اس کو دیجئے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ اس کی جو تنبیہ ہے وہ یہ آیت ہے، لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، حضرت آپ کے اوپر ان کی ہدایت کا لازم ہونا نہیں ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ہدایت وہ اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہدایت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے تو پھر انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہدایت کی دو منزلیں ہیں، ایک اراءت الطریق ہے، دوسرا ایصال الی المطلوب ہے۔ انبیاء کی ذمہ داری اراءت الطریق ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، قوم ثمود کو حضرت صالح نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا تھا لیکن وہ ہدایت قبول نہیں کرتے تھے۔ ہاں جو انجام کے اعتبار سے ہدایت ہے، وہ ہدایت جس کی وجہ سے جنت آپ کو ملے، وہ ہدایت جس کی وجہ سے آپ ایمان والے کہلاتے ہوں، وہ ہدایت انبیاء نہیں دیتے، وہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ پیغمبر صاحب وحی صاحب شرع وہ آپ کو جنت والی ہدایت دینے کے 100% ذمہ دار ٹھیکے دار نہیں ہیں، تو پھر قبروں میں موجود جو بابے ہیں، قبروں میں موجود جو اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، علماء ہیں، وہ آپ کو بیٹا دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ آپ کو جاب دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ آپ کا کام کریں گے؟ وہ آپ کی بگڑی ہوئی کو ٹھیک کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ سب سے بڑی دعا وہ ہدایت ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اور ہدایت جو ایصال الی المطلوب والی ہوتی ہے، جس پہ آپ جنت کے مستحق ہوتے ہیں اور جس پہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بنتے ہیں، اس ہدایت کا دینا انبیاء کے بس کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ اور یہی مطلب ہے سورہ قصص کے اندر جو موجود آیت ہے، انک لا تہدی من احببتا، اے پیغمبر آپ نے ابو طالب کو ایمان کی دعوت دی، آپ ان کے سرحانے کھڑے رہے اور آپ نے ان کو بار بار کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اگر انبیاء ایصال الی المطلوب کرتے تو ابو طالب کو جنت بھیج دیتے، نہیں بھیجا۔ پتہ چلا کہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ہدایت ان کافروں کا 100% ایمان پر ہونا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان نہیں کرتے بلکہ اپنے لیے بھلا کرتے ہو۔ अपने ऊपर एहसान करते हो, अपने ऊपर फजल करते हो कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दे दी, आपको इतनी बात समझ में आ गई कि आप अल्लाह के रास्ते पे खर्च कर रहे हैं, इसका फ़ायदा तुम्हें ही है। फले अनफुसेकुम, तुम्हें ही है। क्या फ़ायदा है? दुनिया के अंदर इज्जत है, दुनिया के अंदर भलाई है। एक फ़कीर हाथ उठा के आपके लिए दुआ करता है, इससे बड़ी दुआ कायनात में कोई नहीं। और आखिरत का भी फ़ायदा है कि अजर है, सवाब है, जन्नतें हैं। वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, लेकिन याद रखिएगा जो तुम खर्च करते हो उसका अल्लाह की रज़ा के लिए होना ज़रूरी है। दिखलावे के लिए खर्च किया तो फ़ायदा नहीं है, नाम व नमूद के लिए खर्च किया तो फ़ायदा नहीं है। अखबार में सुर्खियां छापने के लिए चंदे दे दिए, आटे के ट्रक दे दिए, फ़ायदा नहीं है। अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी के लिए जो करेंगे ख्वाह वो छोटा सा ही क्यों ना हो। हदीस शरीफ में आता है कि मैदान हशर में एक शख्स को कहा जाएगा कि आपने नेकी की थी और उस नेकी का बदला हम आपको देंगे। उस नेकी के बदले में ओहद पहाड़ के बराबर अजर अल्लाह ताला उसको देंगे। वो बंदा हैरान होगा और कहेगा कि अल्लाह, मैंने तो इतना बड़ा ख़र्चा नहीं किया था, मैंने तो आधी खजूर अल्लाह के रास्ते में दी थी। अल्लाह ताला जवाब देंगे कि मैंने तुम्हारे इस सदक़े को अपने पास रख लिया था, या एक तरह से आप कह लें अपने पास उसको मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी थी, और आज जो तुम्हें उसके बदले में अजर मिल रहा है वो ओहद पहाड़ के बराबर है। इसलिए जिसके पास तय्यबात मौजूद हैं और वो खबीसात दीन पे खर्च करता है, अल्लाह को कबूल नहीं है। जिसके पास, गरीब के पास कुछ है ही नहीं, वो 10 रुपये भी देता है, अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं, तौफीक के दारो मदार है। वमा तुनफिकु मिन खैरी वफ़ इलैकुम, और याद रखिए जो तुम आप माल खर्च करते हैं अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं लौटा के दूंगा, मैं वापस करूँगा, अजर की सूरत में, सवाब की सूरत में, दुनिया की इज्जत की सूरत में, दुनिया के बलाओं से हिफाजत की सूरत में, दुआओं को कबूलियत की सूरत में। वअंतुम ला तुज़लमून, और तुम्हारे अजर में से कोई कमी ना होगी, तुम्हारे सदक़ात में से कोई कमी ना होगी। अल्लाह ताला के पास ख़जानों की कमी नहीं है, अल्लाह ताला जिसे चाहें जितना चाहें अजर दें। इसलिए थोड़े से चंदे पर, थोड़े से सदक़े पर, थोड़ी सी ज़कात पर अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस नसीब कर दें। अल्लाह ताला की कुदरत कामिला में ये बात मुमकिन है। और आधी दुनिया खर्च कर दी लेकिन इब्तिगा वजहिल्लाह नहीं था, अल्लाह की रज़ा मकसूद नहीं थी, उसके बदले में कुछ ना मिले, अल्लाह ताला हिफाजत करे, ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। अच्छा जी, खर्च करें, खर्च करें, अच्छा खर्च करें, बेहतरीन खर्च करें, अल्लाह की रज़ा पे खर्च करें, अल्लाह को खुशनुदी हासिल करने के लिए खर्च करें, कहाँ करें, किस पे करें? फरमाया लिल्फ़ुक़रा इल्लज़ीना उसिरु फ़ी सबीलिल्लाह, उन मुस्तहिकीन पे जो अल्लाह के दीन की खिदमत में मशगूल हैं। आप लोग समझते होंगे कि उलमा अपनी तरफ से बातें करते हैं, कुरान की आयत मौजूद है, आगे देखिए। फरमाया उसरूफ़ी सबीलिल्लाह, हसर यासरु का माना है रोकना। कुरान का हिफ्ज बच्चा करता है, वो जॉब नहीं कर सकता क्योंकि वो हिफ्ज कर रहा है। तालिब इल्म मदरसे में पढ़ रहा है, वो जॉब नहीं कर सकता, वो बिज़नेस नहीं कर सकता, इसलिए कि वो पढ़ रहा है। ये वो लोग हैं अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो मुस्तहिकीन हैं। ला यस्ततीउन दरबन फिल अर्दी, और इनके पास इतनी भी तौफीक नहीं है कि ये ज़मीन में घूमे फिरें। यहाँ तलबा मौजूद हैं और मैं ऐसे तलबा को जानता हूँ जो मदारिस दीनिया में पढ़ने के लिए आते हैं, तो आते हुए भी जो उनके टिकट के पैसे होते हैं वो कर्ज़ा लेकर आते हैं, और वापस जाने के पैसे तो होते ही नहीं हैं। तो यही मुस्तहिकीन नहीं तो फिर कौन लोग हैं? मुजाहिदीन हैं, मुबल्लिगीन हैं, तुलबा हैं, उलमा हैं। इसलिए आप ये बात समझ लीजिए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लिल्फ़ुक़रा इल्लज़ीना उहसिरू, ये वो मुस्तहिकीन हैं जो हमारी दीन में रुक जाते हैं। ला यस्ततीउना दरबन फिल अर्दी, और ज़मीन में घूमना फिरना, इधर उधर आना जाना, इसकी तौफीक उनके पास नहीं होती। फरमाया यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिन अत्तअफ़्फ़, और जो बेखबर आदमी होता है वो उनको देख के समझता है ये अमीर हैं। जो बेखबर आदमी होता है वो इनके देख के ये समझता है कि इनके पास तो बहुत कुछ है, और जो मुनाफिकीन होते हैं वो भी इस किस्म की बातें करते हैं। यकूलून ला तुनफिकु अला मन इंद रसूलिल्लाह हत्ता यनफद्दू, सूरत मुनाफिकून में जो मुनाफिकीन के सबसे बड़ी बुराई बयान की गई है वो ये है कि ये वो बेईमान हैं जो मुसलमानों को कहते हैं कि सहाबा पर ख़र्चा न करो। ये फ़ुकरा कौन थे? मुफस्सिरीन कहते हैं मस्जिद नबवी में एक चबूतरा था, आज भी वो मौजूद है। उस चबूतरे पे 70 के करीब सहाबाए किराम दिन रात बैठे रहते थे, पढ़ते रहते थे, दीन सीखते थे। और उन्हीं अफराद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो रावियुल हदीस हैं और सबसे ज़्यादा हदीस उन्हीं ने रिवायत की हैं, वो असहाबे सुफा में से। इसीलिए आज जहाँ कहीं भी आपको दीनी इदारा नज़र आता है, कुरानी मकतब नज़र आता है, लेकिन याद रखिएगा उसमें फ़ीस ना हो। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फ़ीस ली थी? सहाबा ने अपने शागिर्दों से फ़ीस ली? इसलिए वो मनहज अलग है, वो इकरा एंड कंपनी वो एक मामला अलग है, वो सही है या गलत है वो एक बहस है। लेकिन हमें जो हमारा दीन मिला है उसके बदले हमसे फ़ीस नहीं ली गई, हमें जो इस्लाम मिला है उसके बदले कोई टैक्स हमसे नहीं लिया गया है, हम अगलों से क्यों लें? ये अखलाक के एतबार से भी सही नहीं है, शरीर लिहाज से भी सही नहीं है। इसलिए वो मदारिस दीनिया जहाँ पे लोग आते हैं और रुक जाते हैं और अल्लाह के दीन में मशगूल रहते हैं, कारोबार नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, तिजारत नहीं कर सकते, अल्लाह ताला फरमाते हैं इनको दीजिए। और तारीफ़ुहुम बिसीमाहुम, और ए पैगंबर आप उनको उनके चेहरों से जानते हैं। उलमा कहते हैं कि जो सहाबा सुफ़ा पे बैठते थे वो गरीब थे, मिस्कीन थे, उनके पास दो वक्त का खाना भी नहीं होता था, एक वक्त की कोई सूखी रोटी खा लेते थे वही काफ़ी होता था। इसलिए उनके चेहरों में एक ख़ास किस्म का नूर मौजूद होता था, और जब मुसलमान उनको देखते थे तो समझ जाते थे कि जो अल अजल मुस्तहकीन हैं वो ये हैं। और वो लोगों से लिपट कर मांगते नहीं हैं। पता चला कि उलमा तुलबा अहले दीन सूफिया औलिया अल्लाह उनकी एक अलामत ये है, इशारा करना ऐलान करना ये उलमा की ज़िम्मेदारी है। जब तक हम कहेंगे नहीं आपको बात पता नहीं चलेगी, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान जंग के लिए तैयारी का ऐलान नहीं करते थे सहाबा को ख़बर नहीं होती थी कि ज़रूरत है, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह पेशावर फ़कीर मांगते हैं, जिस तरह रास्ते में गुजरने वाले फ़कीर आपसे लिपट जाते हैं और आपसे मांगते हैं, फरमाया ये लोग ऐसे नहीं हैं। वमा तुन्फिकू मिन खैर, और जो कुछ तुम खर्च करते हो फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम, बेशक अल्लाह ताला इसको बखूबी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक ला, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुभानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.